नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डाउकी और त्रिपुरा में श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि बढ़ती मांग के बावजूद नागालैंड में पेट्रोल, डीजल और LPG की निर्बाध आपूर्ति जारी है। कंपनियों ने बताया कि पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध है और उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए निरंतर आपूर्ति की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को LPG की आपूर्ति जारी है और राज्य भर में वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को मैदान में उतारा है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक में विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार हैं। मंगोलिया में उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माही, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।